All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. All glory to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Yeah. Hare Krishna. आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रातःकालीन कक्षा में उपस्थित होने के लिए और विशेष रूप से सभी वरिष्ठ भक्तों का उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि जो सेवा का अवसर मुझे दिया गया है मैं उसको ठीक प्रकार से उसका वहन कर सकूँ। तो आज जो है जैसे हमने अभी पहले बात की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है तो हम उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद चैतन्य चरितामृत से एक बार पढ़ेंगे जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है। तो पहले हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कुछ पढ़ेंगे। आप सब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं? बताइए फिर हरी बोल बोल के। कौन कौन जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को? कौन कौन नहीं जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंतरंग विषय में नहीं जानते मुझे तो वो अगर जितना वैष्णव आचार्य प्रकट करते हैं उतना ही उनके विषय में जान सकते हैं तो उतना ही जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के भाग दो अध्याय 10 के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में वर्णन कर रहे हैं जहां पर श्री चैतन्य वृक्ष की अलग अलग शाखाओं का वर्णन है। तो उसमें अध्याय 10 श्लोक संख्या पयार संख्या 105 तो इसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी की शाखा का वर्णन किया गया है तो मैं पढ़ रहा हूं आप इसे कृपा करके ध्यानपूर्वक सुने। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापाना। अनुवाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। तात्पर्य श्री गोपाल भट्ट श्री रंगम निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा से संबद्ध थे किंतु बाद में गौड़ीय संप्रदाय के अंग बन गए। 1433 शताब्दी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पर थे तो वे वेंकट भट्ट के मकान पर चातुर्मास्य काल में ठहरे थे। तभी उन्होंने जी भरकर महाप्रभु की सेवा की थी। उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ऐसा बताया गया कि उस समय जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे एक छोटे बालक थे उनकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष के आसपास थी। बाद में गोपाल भट्ट को उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी लेकिन गोपाल भट्ट के माता पिता भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और स्वयं महाप्रभु का चिंतन करते करते प्राण त्यागे। जब महाप्रभु से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए हैं और वहां श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी से मिले हैं तो वे परम प्रसन्न हुए और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट को अपने छोटे भाई की तरह रखें। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अगाध स्नेह के कारण हरिभक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट ने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के आदेशानुसार वृंदावन के 7 प्रमुख अर्चा विग्रहों में से राधा रमन विग्रह की स्थापना की। राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़ीय संप्रदाय के हैं। ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं छोटी अवस्था में ही चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए उन्हें सेवा का अवसर मिला और उनके परिवारवासी उनके परिवार के जितने भी जन थे वो सब पहले कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? हाँ तो रामानुजा से संप्रदाय से संबद्ध थे और बाद में वो सब जो है गौड़ीय वैष्णव उन्होंने स्वीकार किया गौड़ी वैष्णविज्म। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किससे दीक्षा ली थी? प्रबोधानंद सरस्वती, मतलब ध्यान से सुन रहे हैं आप, तो प्रबोधानंद सरस्वती से उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद जब वो वृंदावन आ गए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संरक्षण में वो वहाँ पर रहे और महाप्रभु ने उन्हें निर्देश दिया था कि जब तक तुम्हारे विद माता पिता हैं जब तक वो शरीर नहीं त्याग देते हैं तब तक उनकी सेवा करो, उसके बाद जो है आप वृंदावन जा सकते हैं। तो माता पिता की आज्ञा से उसके बाद वो वृंदावन आए और जब वृंदावन आए तो फिर वो दोनों गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के संरक्षण में रहे। जैसा कि यहाँ वर्णन किया गया था कि महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें छोटे भाई की तरह रखें और महाप्रभु के शरीर त्याग, महाप्रभु जब इस अपनी लीला उन्होंने अप्रकट की इस धरा पर, तो उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी काफी विरह का अनुभव कर रहे थे, तो उन्हें महाप्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया कि वो तीर्थ यात्रा भ्रमण पर निकले और उन्हें नेपाल जाने का आदेश दिया। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल जाते हैं, वहां पर गंडकी, काली गंडकी नदी में स्नान करते हैं, तो वहां पर उन्हें उनकी झोली में या उनके कमंडल के अंदर कुछ 12 शालिग्राम शिला उन्हें प्राप्त होती हैं, जो बार बार वो वापस डालते हैं तो फिर उनके कपड़े में, कमंडल में उनके पास आ जाती हैं। तो वो भगवान की इच्छा समझकर उन 12 शालिग्राम शिला को अपने साथ ले आते हैं, वृंदावन आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वृंदावन में प्रचार कार्य करते हैं गोस्वामियों के निर्देशन में। और जैसा यहाँ बीच में वर्णन किया गया कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा और उसकी एडिटिंग में जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सेवा किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से फिर हरि भक्ति विलास को आगे उसको प्रसारित किया गया। तो जो 12 शालिग्राम शिलाएं जिनकी वो सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो किसी एक बार एक फेस्टिवल पे नरसिंह चतुर्दशी पे एक कोई धनी व्यक्ति जो एक धार्मिक व्यक्ति था, उसने सभी गोस्वामियों को कुछ ना कुछ उपहार दिया, तो उसने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान की पोशाक अर्पित की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मेरे पास तो कोई भगवान के विग्रह नहीं है, मैं किसको पोशाक पहनाऊंगा, मेरे पास तो कुछ शालिग्राम शिला है। लेकिन उसने जो व्यक्ति था उसने काफी जोर जमाइश किया, जोर मतलब इंसिस्ट किया कि आप इन्हें रखिए, आप इसकी, आप इसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को काफी तीव्र इच्छा हुई कि काश मेरे पास भी भगवान के विग्रह होते जिनकी मैं सेवा कर पाता, उन्हें वस्त्र पहना पाता। तो उस नरसिंह चतुर्दशी की पूरी रात्रि में वो ये चिंतन करते करते, भगवान से प्रार्थना करते करते ही सो गए। और जब वो अगले दिन सुबह उठते हैं और अपनी नित्य क्रिया के पश्चात, यमुना में स्नान आदि के पश्चात जब वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि जो 12 शालिग्राम शिला थी उनमें से एक शालिग्राम शिला, उसे दामोदर शिला कहा जाता है, वो शालिग्राम शिला के स्थान पर वहां पर अब राधा रमन जी के विग्रह थे वहां पर। बाकी 11 शालिग्राम शिलाएं थी और एक जो है वो राधा रमन जी के विग्रह बन गए थे। तो इस प्रकार से राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा की पूर्ति के लिए वहां प्रकट हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने राधा रमन विग्रह की स्थापना की और जो वृंदावन के 7 प्रमुख अर्चक विग्रह हैं, 7 प्रमुख देवालय माने जाते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, तो उनमें से एक राधा रमन जी हैं। और राधा रमन जी जो हैं, बाकी सब जितने भी विग्रह थे गोस्वामियों के, वो मुगल काल में उनको वृंदावन से बाहर ले जाया गया, लेकिन राधा रमन केवल एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जो अभी भी वृंदावन में मूल रूप में विद्यमान हैं। तो राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़ीय संप्रदाय के हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णवों की अनुमति प्राप्त की, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु यह अनुरोध किया कि उनके नाम का उल्लेख ना किया जाए। इसलिए कविराज ने बहुत सतर्कता पूर्वक एकाध स्तरों पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम उल्लेख किया है। तो उसके बाद जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा काफी वृद्ध अवस्था में, और जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा तो उन्होंने वृंदावन में जितने भी गोस्वामी थे, जितने भी भक्त थे, उन सब से जाकर आशीर्वाद मांगा। मदन मोहन जी के पास गए, गोविंद जी के पास गए, उनके जितने भक्त थे सबसे आशीर्वाद मांगा और सभी से कुछ कुछ जो है चैतन्य महाप्रभु के विषय में जिज्ञासा भी की ताकि वो लिख सकें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया लेकिन अनुरोध किया कि उनके नाम का उल्लेख ना किया जाए। तो ये साधारण बात नहीं है, हम कोई छोटी सी सेवा करते हैं तो उसमें इच्छा होती है कि कुछ तो कहीं पर कोई पूछे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें उल्लेख स्पेशल अनुरोध किया कि उनके नाम का उल्लेख ना किया जाए, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में उनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। श्री जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है कि दक्षिण भारत के एक भक्त ने जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का घनिष्ठ मित्र था, उसने एक पुस्तक लिखी है, किंतु वह संवत्सर के अनुसार संग्रहित नहीं है, अतएव मैं एक शूद्र जीव उस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसके लिए मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा परंपरा के अन्य वरिष्ठ निर्देश प्राप्त कर रहा हूं। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में भी श्री जीव गोस्वामी ने ऐसी ही बात कही है। तो ये जीव गोस्वामी ने भी अपनी पुस्तकों में गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन किया है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं किया है, बस ऐसा बोल के कि हाँ दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका नामक पुस्तक लिखी, हरिभक्ति विलास का संपादन किया, षट संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण कर्णामृत पर भाष्य लिखा। तो उन्होंने वृंदावन में राधा रमन अर्चक विग्रह की स्थापना की। गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले का नाम अनंग मंजरी था और कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का भी अवतार बतलाया जाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके दो शिष्य थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरोभाव तिथि की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं, और जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो सप्त देवालय हैं उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो विग्रह हैं राधा रमन जी, वो अभी भी मूल रूप से वृंदावन में विद्यमान है, और राधा रमन विग्रह जो हैं वो सभी भगवान के जितने विग्रह हैं उनमें सबसे सुंदर माने जाते हैं, और वो साक्षात भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। जो 3 संबंध अभिधेय और प्रयोजन के जो भगवान के विग्रह हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, तो उन तीनों का समावेश राधा रमन जी के विग्रह में बताया जाता है। तो राधा रमन जी के जो चरण हैं वो किसके समान है, किन से कौन से विग्रह के समान है? राधा रमन जी के जो चरण हैं, हाँ, वो मदन मोहन जी के राधा मदन मोहन जी के विग्रहों के समान माने जाते हैं। और जो उनका मुख है वो गोविंद देव जी, राधा रमन जी का जो मुख है वो गोविंद देव जी के समान है, और जो उनका चेस्ट है, वक्षस्थल है, वो गोपीनाथ जी के। तो जो 3 प्रमुख विग्रह हैं, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, जो वृंदावन के वृंदावन गीति भजन में गाते हैं कि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, इन तीनों ही विग्रहों का दर्शन एक साथ अगर करना चाहते हैं तो हम राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं और अभी भी वृंदावन में विद्यमान हैं। तो हम इस पुण्य अवसर पर गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके कृपा के लिए याचना कर सकते हैं कि वो अपनी कृपा हमें प्रदान करें, जिससे हम भी भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें, अच्छे से भक्ति का पालन कर सकें। जिस प्रकार से उन्होंने सभी वैष्णवों के अनुगत रहते हुए अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए, उन्होंने प्रचार कार्य किया, उन्होंने पुस्तकें लिखी, है ना, उन्होंने शिष्य बनाए, उन्होंने मंदिरों की स्थापना की, विग्रह की स्थापना की, तो इस प्रकार से अनेक सेवाएं की। तो इस प्रकार से हम भी जो भी हमें सेवा प्राप्त होती है श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के अंदर, हम उस सेवा को अच्छे प्रकार से करें। और जैसा उन्होंने यहाँ वर्णन किया कि उनका नाम वहाँ पे वर्णित ना हो, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार से कोई इस प्रकार की भावना ना हो कि हम कोई सेवा करें उसके बदले में हमें रिकॉग्निशन मिले। तो ऐसी हम राधा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। अभी जो है हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 11 और इसका श्लोक क्रमांक प्यार जो है 49 यहां बोर्ड पे लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। यह अध्याय का नाम नहीं लिखा है, तो अध्याय संख्या 11 मध्य लीला। तो इसमें जो प्रसंग है, थोड़ा हम प्रसंग के एक बार पहले चर्चा करें। जो प्रसंग है इसमें इस प्रकार से चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ चुके हैं और वहां पर अपना नृत्य प्रति वो कीर्तन कर रहे हैं, और सभी जो भक्त हैं उनसे आकर्षित हो रहे हैं। रथ यात्रा अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। जो वहाँ के राजा प्रताप रुद्र हैं वो भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के इच्छुक हैं, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को से प्रार्थना करते हैं कि वो महाप्रभु के सामने उनकी इच्छा को जाहिर करें और उनकी आज्ञा प्राप्त करें कि वो महाप्रभु के दर्शन कर सकें। लेकिन किसी कारणवश जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राजा से मिलने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं, और बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे बार बार कहोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊँगा। तो उसके बाद अब किस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र उसके विषय में प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये उस विषय में श्लोक है, उस विषय में प्यार है। तो हम पहले इस प्यार का उच्चारण करेंगे। यदि से महाप्रभु न पाई कृपा धन की बा राज की बा देहा सब अकारण धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की कृपा। शब्दार्थ पीछे पीछे दोहराइए। यदि यदि से उन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का ना नहीं पाई मैं पाता कृपाधन कृपाधन की बा राज्य मेरे राज्य का क्या मूल्य की बा देह इस देह का क्या मूल्य सब अकारण मेरे प्रत्येक वस्तु निरर्थक मेरे नहीं है प्रत्येक वस्तु निरर्थक। तो अनुवाद पीछे दोहराइएगा। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। अनुवाद बहुत अच्छा है, फिर से दोहराइए। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। आप सब स्वीकार करते हैं? तो तात्पर्य कृपा करके सुनिए। यह दृढ़ व्रत का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती उसका जीवन व्यर्थ है। श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा गया है कि पराभवस्तावद अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा नहीं करता तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। आध्यात्मिक जिज्ञासा के बिना हमारा श्रम तथा हमारे श्रम का लक्ष्य समय के अपव्यय मात्र हैं। तो छोटा सा तात्पर्य है लेकिन एक एक वाक्य एक एक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत और आप सबके चरणों में एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस सेवा को अच्छे से कर सकूँ। आप सब काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे उससे वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है लेकिन जैसे अभी पढ़ा कि जो सेवा उन्हें प्राप्त हुई उस सेवा हमें करना चाहिए तो उसे सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि अनुवाद में महाराज प्रताप रुद्र कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। और इससे पिछले प्यार के अनुवाद में अगर पढ़े तो वहां पे महाराज कह रहे हैं कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ना देखने का संकल्प ले रखा है तो मैं भी कृत संकल्प हूं, यदि मैं उनका दर्शन नहीं पाता तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। तो और प्रभुपाद के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह दृढ़ व्रत का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भक्ति के लिए दृढ़व्रत होना एक विशेष क्वालिटी है, गुण है, जो कि भक्ति में उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति में दृढ़ता नहीं होती है तो भक्ति में प्रगति करना उतना सरल नहीं रहता है, भक्ति में प्रगति की गति जो है वो धीमी रह सकती है। तो अब ये दृढ़ता किस प्रकार से प्राप्त की जाए, तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार से हम भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, एक अपने विषय में कि किस प्रकार से हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर सकते हैं, क्या उसमें समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से हम उनका समाधान कर सकते हैं। और उससे पहले महाराज प्रताप रुद्र के जीवन में महाराज प्रताप रुद्र की क्या स्थिति है और उनका क्या बैकग्राउंड है, तो हम थोड़ा सा पहले महाराज प्रताप रुद्र के विषय में चर्चा करेंगे। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार महाराज प्रताप रुद्र जो हैं वो अपने पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे जिनके कारण भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। आप वो कथा जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह किस प्रकार प्रकट हुए थे। तो राजा इंद्रद्युम्न थे जो भगवान के भक्त थे और उनकी इच्छा के लिए जो है भगवान इस रूप में प्रकट हुए। नील माधव की उन्होंने पूजा की लेकिन नील माधव प्रकट नहीं हुए। तो श्रीवास और विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न इनके कारण जो है भगवान जगन्नाथ अपने इस प्रेजेंट रूप में जो अभी हम रूप देखते हैं उस रूप में प्रकट हुए। वही जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो महाराज चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाराज प्रताप रुद्र के रूप में प्रकट हुए। और ये महाराजा प्रताप रुद्र जो हैं ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये इस महाराज प्रताप रुद्र के अपने इस जीवन में भी ये बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस कारण से उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं कि वो एक राजा है। तो राजा जो है उसे विषय व्यक्तियों से संग करना पड़ता है, और एक भक्त के लिए एक विषय व्यक्ति का संग करना उचित नहीं है, विशेष रूप से ऐसे भक्त के लिए जो कि वैराग्य आश्रम में है, वैराग्य जीवन में है। और ये राजा प्रताप रुद्र के जो पिताजी हैं वो भी जो है एक बहुत बड़े भक्त हैं। राजा प्रताप रुद्र के पिता कौन है, वो जानते हैं क्या नाम है उनका? नाम है राजा पुरुषोत्तम देव। और जो राजा पुरुषोत्तम देव है वो भी जगन्नाथ जी के बहुत जो है उच्च कोटि के भक्त हैं। उनके विषय में कथा आती है भक्ति रत्नाकर में कि जो जगन्नाथ जी हैं वो उनसे बात किया करते थे, और कोई भी आसपास के सेनाओं आसपास के राज्यों में कभी कोई युद्ध छिड़ता था तो जगन्नाथ जी उनके साथ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और जगन्नाथ जी जो हैं वो भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो एक बार रथ यात्रा के समय में राजा पुरुषोत्तम देव जो हैं वो रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, और उनका विवाह जो है उस समय तय हो चुका था कांची नरेश की पुत्री के साथ। तो कांची नरेश जो है उसी समय वहां पे पहुंचते हैं, और वो देखते हैं कि जिससे हमारी पुत्री का विवाह तय हुआ है वो तो झाड़ू लगा रहा है, ये कहां का राजा हुआ, राजा कभी झाड़ू लगाता है क्या? और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा रहा है, पूरा टाइम जो है पूरा टाइम जो है रथ यात्रा के समय वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू मारने की सेवा तो जो है बहुत कोई नीचे व्यक्ति की सेवा है ना, ये तो कोई उच्च कुल का राजा की सेवा तो बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने जो है रिश्ता तोड़ दिया, नहीं ये विवाह नहीं होगा। तो बाद में जब राजा पुरुषोत्तम देव को पता चला तो उन्होंने भगवान को बोला, देखो क्या हो गया, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था और उसके बदले मुझे क्या मिला, मेरा रिश्ता टूट गया, तो उनको बुरा लगा है ना। तो फिर तो उन्होंने ये निर्णय किया कि कांची नरेश से युद्ध किया जाए। तो कांची नरेश से युद्ध करने के लिए चले गए, और जब कांची नरेश से युद्ध करने के लिए गए तो हार गए। वापस आकर फिर जगन्नाथ जी को बोला कि पहले मेरा रिश्ता तोड़वा दिया, अब जो है युद्ध करने गया तो युद्ध में भी हार गया, क्या क्या कर रहे हो आप, कुछ तो करो। तो फिर जो है भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इस बार फिर से दोबारा युद्ध करने के लिए जाओ। तो अब वो दोबारा युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक दूध बेचने वाली एक महिला मिलती है, दूध छाछ जो है वो मटके में बेच रही थी, वो मिलती है, वो राजा को रोक के बोलती है कि आपसे पहले अभी दो और यहां से राजकुमार गए हैं, दो घोड़ों पे, एक सफेद घोड़े पे, एक काले घोड़े पे, और वो मुझे अंगूठी देकर गए हैं, वो सारा जो है मेरा जो दूध छाछ था वो सब उन्होंने पी लिया, और ये अंगूठी देकर गए हैं, और बोला कि पीछे पीछे राजा आ रहा है, वो अंगूठी देकर उससे जो है इसका जो भी मूल्य था वो ले लेना। तो राजा जब वो अंगूठी देखता है तो पहचान जाता है ये तो जगन्नाथ जी की है, तो वो समझ जाता है कि मतलब युद्ध करने के लिए मुझे भेज दिया, लेकिन मुझसे पहले जो है जगन्नाथ जी जा चुके हैं। तो जब जगन्नाथ जी वहां जा चुके हैं, राजा जब वहां पहुंचता है तो देखता है वो सब युद्ध तो हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, और सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अब वहां से जो राजा पुरुषोत्तम देव हैं वो कांची में अब बस ये स्थापित करने के लिए, हाँ हम जीत चुके हैं, हम जीत गए हैं, वहां पे जो कांची नरेश हैं वो गणेश जी की पूजा करते थे, तो उन गणेश जी को उठा लाते हैं, बोले कि ये हमने बंदी बना लिए हैं ना, ये हमने इनका ऐसे कई वो जो कहते हैं ना कि शिव जी को बोलते हैं कि भी मैं लेके जा रहा हूँ अपना बच्चा छुड़ाना हो तो ले आना। तो इस प्रकार से वो गणेश जी को जो है राजा पुरुषोत्तम देव वहां से कांची से ले आते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में ले आते हैं और वो बोलते हैं कि जगन्नाथ जो गणेश जी हैं इन्होंने सारी जो है बीच में इतने सारे रुकावटें पैदा की थी ये सब सारे इस कार्यक्रम के अंदर। गणेश जी का तो कार्य है सभी विपदाओं को टालने वाला होता है, तो ये नकली गणेश जी हैं। तो उनका वहां पे नाम रख दिया जाता है कि भांड गणेश, नकली गणेश जी हैं। तो जगन्नाथपुरी के अंदर वो गणेश जी के विग्रह अभी भी हैं ऐसा बताया जाता है। तो उन गणेश जी का मंदिर है भांड गणेश के नाम से, वो भांड गणेश नकली गणेश जी हैं। तो उसके बाद जो है फिर कांची नरेश अपनी पुत्री का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव के साथ करते हैं, और उनके पुत्र के रूप में जो है राजा प्रताप रुद्र जो है वो आते हैं, जो कि इसी भक्त परंपरा में ही आ रहे हैं। तो राजा प्रताप रुद्र भी भक्त हैं, और जब वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। और जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि मैं राजा प्रताप भगवान से मिलना चाहता हूं, और सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु मना कर देते हैं कि नहीं मैं विषय व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, विषय व्यक्ति से मिलना एक सांप से मिलने के समान है, या एक विषैले चीज को खाने के समान है, विष लेने के समान है, तो इसलिए मैं राजा से नहीं मिलूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो साधारण राजा नहीं है, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, ना, वो भक्तों की बहुत सेवा करते हैं और जगन्नाथ जी के इतने अच्छे भक्त हैं, उनको पूरे भक्त खानदान से ही आ रहे हैं, उनके पिता भी भक्त थे। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी हो, चाहे स्त्री जो है वो लकड़ी की उसमें लकड़ी की गुड़िया खिलौने के रूप में भी क्यों ना हो, लेकिन उसका संपर्क करने से जो है व्यक्ति के हृदय के अंदर दूषित भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए एक विशेष रूप से जो वैरागी भक्त है उसको किसी भी प्रकार के इस असत्संग से बचना चाहिए। तो दो प्रकार का असत्संग बताया गया है ना, जो असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, जैसे वैष्णव व्यवहार का क्या अर्थ है तो उसमें बताया जाता है कि असत्संग त्याग। तो असत्संग दो प्रकार का बताया गया है उसमें, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण अभक्त आर। तो दो प्रकार का वैष्णव, जो दो प्रकार का असत्संग है क्या क्या, पहला क्या बताया था, स्त्री संगी। तो जो भी जो है विषयी संगी है, जो स्त्री का संग करता है या स्त्री का संग करता है या स्त्री के संग करने वाले का संग करता है, उसका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा अभक्त, जो कि कृष्ण का भक्त नहीं है, अभक्त है, उनके संग से बचना चाहिए। तो इन दोनों का जो संग है वो असत्संग कहा गया, कि इनका संग हमें लेना नहीं चाहिए। अब आप सोच सकते हैं सारे संसार में तो ऐसे भक्त लोग मिलेंगे, तो इनको संग देना चाहिए, इनको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है दृढ़ता से मना कर देते हैं और साथ साथ ये धमकी देते हैं एक प्रकार से कि अगर दोबारा मुझसे अगर ऐसा बोला तो मैं फिर जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल नहीं पाते हैं। और उससे पहले जो है सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु के ठहरने के लिए व्यवस्था करा चुके होते हैं, तो उनसे भगवान की सेवा करा चुके होते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। और इसी बीच रामानंद राय आते हैं राजा प्रताप रुद्र के साथ जगन्नाथपुरी के अंदर। तो रामानंद राय महाप्रभु से मिलते हैं। ये सब जो है इस अध्याय के अंदर सब पहले वर्णन है, तो हम उसका सब रिकैप कर रहे हैं एक प्रकार से। तो रामानंद राय जो है वो आते हैं महाप्रभु के पास और महाप्रभु को बताते हैं कि महाप्रभु मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हें छुट्टी कैसे मिल गई, तुम तो राजा की सेवा में थे। तो उन्होंने कहा जैसे आपने इच्छा की थी कि मैं राजा से अपनी सरकारी नौकरी से छुट्टी ले लूँ, रिटायरमेंट ले लूँ, तो राजा जो था, राजा को जैसे ही मैंने ये कहा, राजा प्रताप रुद्र को, तो वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा करने का अवसर जो है बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों को मिलता है, तो आपको इस सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत जो है मुझे छुट्टी दे दी, तो उन्होंने मेरी रिटायरमेंट स्वीकार कर ली और साथ साथ जो है पेंशन भी दे रहे हैं, उसमें कुछ टैक्स भी नहीं कटेगा, फुल पेमेंट मिलेगी। और वो बड़ी प्रसन्नता से दिया है, कोई नाराज होकर नहीं दिया, बड़ा खुश होकर दिया है। तो जब राजा प्रताप रुद्र के बारे में रामानंद राय ने महाप्रभु को ऐसा कहा, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि वो राजा तुमसे अत्यंत प्रेम करता है, तो क्योंकि वो भक्त से प्रेम करता है तो निश्चित रूप से कृष्ण उस पर कृपा करेंगे। तो इसलिए यहां पर ऐसा आगे भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, प्रभुपाद इस अध्याय के समरी में बताते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर इस अध्याय की समीक्षा में लिखते हैं कि जब ये प्रसंग होता है, जब महाप्रभु ऐसा सुनते हैं, तो उनका हृदय जो है वो राजा प्रताप रुद्र के लिए कोमल हो जाता है, वो अपनी कृपा करने के लिए उस पर कुछ कुछ तैयार हो जाते हैं, हो चुके होते हैं, लेकिन भारी रूप से ऐसा दिखाते हैं कि मैं उसका संग नहीं करना चाहता। तो उसके बाद जो है राजा प्रताप रुद्र ये सब वर्णन हुआ और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को बताया कि महाप्रभु ने मिलने के लिए मना कर दिया है। तो उस श्रृंखला के अंदर ये प्यार है जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इसमें 5 प्यार हैं। तो जैसे ही महाप्रभु के नहीं मिलना चाहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे, राजा प्रताप रुद्र से, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना तो वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वो बोले कि महाप्रभु का तो अवतार ही जो हुआ है वो सब पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो अगर मैं पतित हूं वही देख रहे हैं तो फिर तो मैं उनकी कृपा का पात्र बनता हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझ पर मेरी मेरा उद्धार ना करें। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बनता है, इन पर कृपा करनी चाहिए। और उसके बाद जो है फिर राजा प्रताप रुद्र उदाहरण देते हैं कि जब जगाई मथाई का भी उद्धार कर दिया है तो मेरा भी नंबर कहीं तो आना चाहिए, है ना। और फिर कहते हैं कि अगर वो मुझ पर कृपा नहीं करना चाहते, अगर उनका दृढ़ निश्चय है तो मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि अगर वो मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं श्री त्याग दूंगा। और जो आज का हमने ये प्यार पढ़ा तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। तो इतनी दृढ़ता है उनके अंदर। अगर हमें अब अपने जीवन में हम देखें, या हमने राजा प्रताप रुद्र के विषय में चर्चा किया कि उनका किस प्रकार से कैरेक्टर है, और आगे उनको सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि जब आप में इतनी दृढ़ता है भगवान से मिलने के लिए, आप में इतनी उत्कंठा है, इतनी तीव्र इच्छा है, तो निश्चित रूप से जो है भगवान आपको आप पर कृपा करेंगे, आपका उद्धार करेंगे, आपसे मिलेंगे। और जो रामानंद राय के साथ बात हुई थी वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि भगवान जो है वो आपसे प्रसन्न है क्योंकि आपने रामानंद राय को सेवानिवृत्त कर दिया है, तो इसलिए आपको शीघ्र कृपा मिलेगी। हाँ, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय बताते हैं कि रथ यात्रा के समय आप जैसे ही अवसर मिलेगा, भगवान विश्राम करेंगे गुंडीचा उद्यान के अंदर, तो वहां पर जाकर आप श्रीमद् भागवतम के जो रस पांच अध्याय कहा जाता है तो उसका उच्चारण करेंगे, और उसका उच्चारण करेंगे तो महाप्रभु उस समय कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से मग्न है, तो वो जब उन अध्यायों को सुनेंगे, उन श्लोकों को सुनेंगे, तो वो अत्यंत भाव के अंदर आ जाएंगे, वो ये देखेंगे भी नहीं कि कौन है, और वो तुरंत आपका आलिंगन कर लेंगे और आपको कृपा प्रदान करेंगे। तो ये तो इसका अंतिम होने वाला है ना, उनको कृपा मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले भी जो है कई बार इसके अगले अध्यायों के अंदर इसका वर्णन सुनेंगे कि रथ यात्रा के बाद कृपा मिलने वाली है, लेकिन महाप्रभु उनका आलिंगन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी कई बार भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र पर कृपा करते हैं। उसका वर्णन आता है कि अगले अध्यायों के अंदर कि रथ यात्रा से पहले जब बंगाल के भक्त आते हैं तो सभी बंगाल के भक्तों की चैतन्य राजा प्रताप रुद्र सेवा करते हैं, उनका रहने का खाने का सब इंतजाम करते हैं, सभी के ठहरने की व्यवस्था करते हैं, सभी का खाने का इंतजाम करते हैं। ये बात सब जो है महाप्रभु सुन रहे हैं कि राजा प्रताप रुद्र इतनी भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो जिससे वो उनके लिए और पॉजिटिव होते जा रहे हैं कि क्योंकि जो भक्तों की सेवा में लगा है महाप्रभु भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हैं। उसके बाद जो है जब रथ यात्रा शुरू हो रही है तो उसमें अलग अलग टोलियों में सभी भक्त जो है कीर्तन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सभी टोलियों के अंदर नृत्य कर रहे हैं, ये सिर्फ चैतन्य राजा प्रताप रुद्र देख पाते हैं, तो राजा प्रताप रुद्र पर भगवान ही विशेष कृपा करते हैं कि वो देख पा रहे हैं, तो प्रताप रुद्र को भगवान की कृपा मिलना प्रारंभ हो चुकी है क्योंकि वो भक्तों की सेवा में लगे हैं। उसके बाद बीच में एक और प्रसंग आता है कि जब राजा प्रताप रुद्र के एक जो सहायक थे हरिचंदन नाम के, वो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए खड़े हैं और काफी सारे भक्त भीड़ है, तो भक्त महाप्रभु को नृत्य करने में कोई बाधा ना हो उसलिए उनके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हैं, तो उनके आगे श्रीवास पंडित होते हैं, तो वो बार बार हटाने के लिए कि राजा के सामने आ रहे हैं, तो वो हरिचंदन बार बार राजा को उनको हटाने का प्रयास करते हैं कि हट जाओ, तो श्रीवास पंडित एक दो बार देखते हैं, फिर जो है घूम के आराम से नृत्य करते हुए हाथ लग जाता है उनको तो हाथ थोड़ा जोर से लग जाता है, लेकिन तो हरिचंदन को गुस्सा आ जाता है, तो जब हरिचंदन को गुस्सा आता है तो राजा प्रताप रुद्र वहीं पे हैं, वो भी सब देख रहे हैं, लेकिन राजा प्रताप रुद्र उन्हें रोकते हैं कि तुम पर एक भक्त की विशेष कृपा हुई है, और चैतन्य महाप्रभु सब देख रहे हैं कि हाँ देखो कि किस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र व्यवहार कर रहे हैं, वो भक्तों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे भक्त से भी किस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं, कि भक्त पर क्रोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उस भक्त को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप पर भक्त की कृपा हुई है, तो राजा प्रताप रुद्र पर भगवान की कृपा निरंतर हो रही है। और इस बीच में एक और वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय बीच में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं कि वो बार बार भाव में हैं और गिरने वाले हैं, और जैसे वो गिरने वाले हैं तो एक बार बिल्कुल राजा प्रताप रुद्र के सामने आके गिरते हैं और राजा प्रताप रुद्र उन्हें हाथों में पकड़ लेते हैं, तो उस समय भी वो जो है राजा प्रताप रुद्र आलिंगन करते हैं महाप्रभु का, तो महाप्रभु जानबूझ के स्वयं उन्हें अवसर दे रहे हैं, लेकिन बाद में भारी तौर पर वो दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैंने किसका आलिंगन कर लिया, दूर हटो, तो इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र का हमने देखा कि राजा प्रताप रुद्र एक राजा हैं, हर प्रकार से छोटी छोटी सेवाएं कर रहे हैं, उनके पिता भी झाड़ू लगा रहे थे वो भी झाड़ू लगा रहे हैं, सब भक्तों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो रामानंद राय को प्रसन्न करने के लिए, रामानंद राय से प्रेम करते हैं, उनके लिए उन्होंने इतनी सेवा की कि उनको सेवानिवृत्त कर दिया सरकारी नौकरी से और पूरी पेंशन दे रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो महाप्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुए कि वो भक्तों की कितनी सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए महाप्रभु ने उन पर कृपा की ना। तो इसमें राजा प्रताप रुद्र का हमें क्या गुण दिखाई देता है, इस पूरे प्रसंग में राजा प्रताप रुद्र का क्या गुण दिखाई देता है, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं और विनम्र हैं और क्या हैं, सहनशील हैं, दृढ़ता हो गए हैं। हमें बोले कि आपको इस सेवा दी जाती है और मतलब हम साधारण देखते हैं अगर किसी भक्त को सेवा दी जाती है कोई और उसे उस सेवा बड़ी उत्साह से करता है, अगर कुछ दिक्कत आती है कोई उसे अगर कुछ कहा जाए कि ये सेवा अच्छी नहीं हो रही है कुछ, तो बड़ा मुश्किल है फिर वो आगे सेवा कंटिन्यू करेगा। बड़ा आसान है कि ठीक है बहुत है, बहुत सेवा मिलती है किसी और मंदिर में कर लेंगे या है ना, तो बड़ा आसान है सेवा छोड़ के जाना। तो चैतन्य महाप्रभु को वो भी ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है आप दर्शन नहीं दोगे तो क्या, जगन्नाथ जी तो हैं, तो मैं जगन्नाथ जी को जो है, और ऐसा भी एक समय पहले वर्णन आता है क्योंकि जगन्नाथ जी के भक्त पहले से ही हैं तो किस प्रकार से उनकी आस्था चैतन्य महाप्रभु में दृढ़ होती है, तो एक बार उन्हें स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है कि जगन्नाथ जी के सिंहासन पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु पूरा मिट्टी में मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी में लिपे हुए हैं और उनके मुंह से लार बह रही है, सोचते हैं कि कैसा ये, कैसे जगन्नाथ जी के सिंहासन में बैठ गए। फिर उन्हें दिखाई देता है कि जगन्नाथ जी बैठे हैं, उनका मुंह पूरा मिट्टी में भरा हुआ है और उनके मुंह से लार निकल रही है। तो उससे उन्हें वो समझते हैं, समझ जाते हैं कि जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु है वो जगन्नाथ जी ही है। तो इसलिए उनके जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु में और अधिक श्रद्धा जो है दृढ़ हो जाती है। तो दृढ़ता का विशेष गुण यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, इससे पिछले श्लोक के अंदर भी, पिछले तात्पर्य में भी, और वहां पे भगवदगीता का और श्लोक मेंशन करते हैं, नौवें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो जो भक्त है वो दृढ़व्रत होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, वो सदा भगवान की कीर्तन करता है, सदा भगवान का कीर्तन करता है, यतन्तश्च दृढ़वता, यतन पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य भगवान की सेवा में लगा रहता है, भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है। तो भक्ति के सभी कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है। तो यही गुण जो है महाराज प्रताप रुद्र में है, जैसा इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने पहले पंक्ति में बोला कि यह दृढ़ व्रत का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब हम अपने जीवन में देखें कि हम अपने भक्तिमय जीवन के अंदर क्या अनुभव करते हैं, दृढ़ता कितना परसेंट दृढ़ता का अनुभव करते हैं? कुछ परसेंट दृढ़ता तो होगी ही, तभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या दृढ़ता, क्या हम दृढ़ता का सर्वोत्तम उदाहरण के उस स्तर पर अभी पहुंच पाए हैं? क्या हम पहुंचना चाहते हैं? क्या हम दृढ़ता के सर्वोत्तम उदाहरण पर पहुंचना चाहते हैं? है ना, सभी पहुंचना चाहते हैं, कुछ कुछ सभी नहीं, काफी लोग तो हैं ऑलरेडी, कुछ लोग तो दृढ़ता में किसी की कमी है, हमें आपको लगता है दृढ़ता की कमी है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आप सब ज्यादातर भक्त जो है माला पे जब करते हैं, सभी भक्त करते हैं माला पे जब, ठीक है, तो सब एक निर्धारित संख्या माला पे जब करते हैं, अधिकांशतः भक्त 16 माला तो जब करते ही हैं। आप कौन कौन भक्त 16 माला जब नहीं करते हैं, 16 से कम करते हैं, ठीक है, कितना माला करते हैं प्रभु जी? 10-11 माला करते हैं, 10-11 माला डेली प्रतिदिन करते हैं, उसके बाद 10-11 माला पूरा होने के बाद अगली माला करते हैं, या माला का क्या करते हैं? 10 माला हो गई आपकी, आज की 10 माला करनी थी, आपने 10 माला किया, उसके बाद रख देते हैं, अगले दिन जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। और हम जो वक्त 16 माला जब भी करते हैं तो वो भी आज का कोटा पूरा हो गया है, उसके बाद माला रख देते हैं ना, भगवान का उसके बाद कोई लेने की इच्छा नहीं है, कोई एक माला और कर लो, एक टाइम बचा हुआ है तो नहीं टाइम बचा हो तो मेरी रीडिंग बची हुई है, मेरी हियरिंग बची हुई है, ये सब हो गया तो मुझे आराम भी करना है और काम भी है ना, तो और कामों में हमारी दृढ़ता है ना, लेकिन भगवान का नाम लेने में हमारी दृढ़ता लिमिटेड, हम लिमिटेड से जो है दृढ़ता शो करते हैं कि हाँ एक जितना हमारे व्रत है, जो दृढ़ व्रत है, जो व्रत है उतना व्रत जितना व्रत जितनी दृढ़ता है, व्रत से आगे की दृढ़ता नहीं है। हमारा व्रत 16 माला का है तो हम 16 माला की दृढ़ता है, और 10 माला का व्रत है तो 10 माला की दृढ़ता है, किसी का उसका वो ज्यादा का हो तो वो उतनी दृढ़ता है, उसके बाद जो है माला लेना बड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आपको ये एक अवसर दिया जाए या आपको एक डील मिले कि एक माला जब करने पे आप एक माला पूरा जब करेंगे तो आपको एक 2000 रुपए का नोट मिलेगा, तो माला करना चाहेंगे? कितनी? दो चार, अभी आप कितनी माला करते हैं? 18 से 20 माला करते हैं, तो 18 से 20 माला पे अभी तो आपको कुछ नहीं मिलता है कुछ तो अगर एक माला करने पे आपको 2000 रुपए का नोट मिले तो सभी वक्त माला करना चाहेंगे? नहीं, कौन कौन करना चाहेंगे? अभी उत्साह कम है, और ज्यादा चाहिए तो एक ही माला करना चाहेंगे, 2 माला, 10 माला, कितनी माला प्रभु जी, कितनी माला कर सकते हैं? 10 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो संतुष्ट हैं भक्ति प्रभु जी, संतुष्ट हैं भक्त हैं तो 10 माला में तो 10 × 2000 में संतुष्ट हो जाएंगे, 64 करेंगे तो मतलब हमारी दृढ़ता किस चीज में है अभी? तो दृढ़ता तो है, हाँ, तो मतलब दृढ़ता तो है, ऐसा नहीं कि दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता तो है, लेकिन दृढ़ता कहां पे है ना, वो भी गड़बड़ है ना, हाँ, तो दृढ़ता जो है हमारी, दृढ़ता तो है, ऐसा नहीं है कि हमारे में दृढ़ता नहीं है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि आजकल जो है भक्ति में थोड़ी दृढ़ता कम हो गई है, भक्तों का संग नहीं कर पा रहा हूं, भक्तों का विरह का अनुभव कर रहा हूं। कभी बिजनेस का विरह तो किसी को अनुभव नहीं होता कि मैं बहुत दिनों से बिजनेस में नहीं जा पा रहा हूं, बिजनेस का विरह का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी दृढ़ता जिस चीज के प्रति हमारी आसक्ति है, जिस चीज के प्रति हमारा प्रेम है, वहां पे हमारी दृढ़ता पूरी है। तो अगर भगवान नाम में हमारा प्रेम होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा, तो फिर दृढ़ता के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति है, तो फिर दृढ़ता सिर्फ एक सुनने कहने की बात है ना, फिर दृढ़ता लाना बड़ा मुश्किल कार्य है ना। तो अभी जो दृढ़ता है उस धन में है। धन में क्यों दृढ़ता है? क्योंकि ऐसा लगता है हर व्यक्ति को, हर एक भौतिक समाज के अंदर, कि धन से ही सब कुछ आ सकता है। भक्ति करनी तो भी धन चाहिए है ना, ऐसा बोलते हैं कि मंदिर बनाने के लिए भी धन चाहिए है ना, प्रचार करने के लिए धन चाहिए, घर चलाने के लिए धन चाहिए, धन के बिना कैसे भक्ति होगी है ना, भूखे पेट थोड़ी ना भक्ति होगी, धन तो चाहिएगा। तो हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि धन आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे जो राजा है, राजा प्रताप रुद्र जो राजा है, धनी व्यक्ति है ना, उनके पास धन की कमी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ है। वो इस धन को व्यर्थ समझते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में धन के काफी सारे लाभ बताए गए हैं। धन से क्या क्या होता है? अगर धन अधिक हो तो फिर क्या होगा? उसे अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा एक लाभ है कि ना, एक संसार के अंदर तो अहंकार चाहिए। और क्या लाभ है? अहंकार होगा तो उससे क्या होगा? फिर क्रोध भी होगा है ना, अहंकार होगा तो चूर भी होगा है ना कोई अहंकार चूर भी करेगा, किसी से द्वेष भी होगा, मान सम्मान की इच्छा भी होगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर जो है दुख भी होगा है ना, अहंकार को ठेस भी पहुंचेगी है ना, लोभ भी होगा, और धन बढ़े ये भी लोभ भी होगा, ईर्ष्या भी होगी। ये सारे जो है धन के कितने लाभ हैं है ना, धन प्राप्त करने के ये सारे लाभ हैं, ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। धन को कोई चुरा लेगा उसकी जो है संभाल भी करनी पड़ेगी है ना। तो व्यक्ति पूरा समय जो इस धन में, धन को कैसे इकट्ठा करूं, कैसे उसको बचाऊं, कैसे उसको बढ़ाऊं, कैसे उसका एंजॉयमेंट तो चलो कम भी चलेगा लेकिन धन 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 के पीछे जो है वो तब तक पड़ा रहता है जब तक वो निधन ना हो जाए ऐसा बोलते हैं कि जब तक निधन ना हो जाए व्यक्ति तब तक वो धन के पीछे ही जो है भागता रहता है। लेकिन चलो किसी प्रकार से वो धन के द्वारा ये सब चीजों का अनुकूल कर भी ले। प्रभुपाद जी अपने भागवतम के लेक्चर्स में बोलते हैं कि अगर वो सभी सुविधाओं को अरेंजमेंट कर भी ले कि उसे कोई दुख नहीं होगा इस संसार के अंदर, वो बीमारियों से भी बचता रह सके है ना, और सभी सुख सुविधाओं का भी इंतजाम कर ले, धन की कोई कमी नहीं है, आसपास के सब लोग भी सब बढ़िया हैं, किसी से कोई द्वेष भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो ये हमेशा के लिए कर सकता है? क्यों, क्या दिक्कत आएगी? मृत्यु आएगी, हाँ बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे से बच लिया कि मैं बुढ़ापे के अंदर भी जो है जवानी का आराम ले रहा हूं लेकिन वो शरीर तो त्यागना पड़ेगा, शरीर तो नहीं छोड़ सकते, शरीर त्यागने से नहीं बच सकते हैं है ना। शरीर त्यागने से कोई बच सकता है क्या? क्या हमें से कोई मरना चाहता है? हम कब मरना चाहते हैं? कब मरना चाहते हैं? आप लोग से पूछा जाए कि आप कितने समय के बाद मरना चाहते हैं? कभी नहीं मरना चाहते हैं ना, कोई कभी नहीं मरना चाहता। जानते सभी है कि मरना पड़ेगा लेकिन वास्तव में कोई कभी नहीं मरना चाहता। तो लेकिन ये जानते हैं कि मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो जो भी कुछ इकट्ठा किया है चाहे वो धन भी क्यों नहीं है, जिसके कारण अभी हो सकता है इस जीवन में हमें सभी सुख भी मिल रहे हो लेकिन वो सुख छूट जाएगा और अगला शरीर क्या मिलेगा हम नहीं जानते हैं। और अगले शरीर जहां भी हम जाएंगे, जहां भी जाना होगा, क्या वहां पर ये धन काम आएगा? नहीं है ना। इस संसार के अंदर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संसार में भी एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो इस देश का धन काम नहीं आएगा है ना, वो एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो क्या यहां का धन दूसरे लोक में जाने पर एक्सचेंज करा पाएंगे? तो कौन सा धन है जो दूसरे जीवन में भी काम आएगा? हाँ, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वास्तविक धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो भगवान के नामों का धन है ये वास्तविक धन है। और जो वो 2000 रुपए का नोट था वो आप डेली प्राप्त कर रहे हैं है ना, आप वास्तविक धन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस भौतिक धन की लालसा के अंदर जो वास्तविक धन हम प्राप्त कर रहे हैं हम उसका महत्व भूल जाते हैं। उसी प्रकार से है कि अगर जैसे एक उदाहरण दिया देते हैं प्रभुपाद जी कि एक गांव का व्यक्ति था, उसके मित्र ने उसे देखा कि तुम यार क्या बैलगाड़ी चलाते हो, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हो, कितना परिश्रम करते हो, मैं तुम्हें एक जो है बढ़िया गाड़ी देता हूँ। तो उन्होंने बढ़िया जो है मर्सिडीज गाड़ी उसको दे दी, गांव में भेज दी। और कई वर्षों के बाद जो है उसे फोन किया कि कैसी चल रही गाड़ी, अभी लाइफ कैसी चल रही है? तो उसने बताया वो गाड़ी तो कुछ समय चली, मैं तो वापस वही बैलगाड़ी और ट्रैक्टर वही सब चला रहा हूँ। तो उनका कुछ समय क्यों चली, गाड़ी तो बहुत अच्छी थी। बोले पता नहीं, वो 2-4 दिन में ही वो खेत में उसकी हालत खराब हो गई, तो उसको तो वही करना था, उसको खेत में चलाना था, वहां पे कौन सा उसको मर्सिडीज गाड़ी को वो सड़कों में चलाता, सड़कें थी ही नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी हम बताते हैं कि इसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन है वो जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य के लिए उसको उपयोग ना करके अगर हम उसे इस संसार में सुख भोगने के उद्देश्यों में अगर लगाएंगे तो हम एक प्रकार से उस मर्सिडीज गाड़ी का जो वास्तविक उपयोग था उसमें उपयोग ना करते हुए उसका हम दुरुपयोग कर रहे होंगे। उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम जो वास्तविक धन है उसका हम सही मूल्य उसका नहीं पहचान रहे हैं, उसको हम वास्तविक धन अपने पास होते हुए भी हम एक निर्धन के समान जी रहे हैं है ना, और निर्धन के समान जीते जीते वो निर्धन तक वो कार्य चलता रहेगा। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भगवान के नाम जो है, जो वास्तविक धन है, हम उसकी शरण स्वीकार करें। तो जो दृढ़वत के विषय में यहां बताया है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती उसका जीवन व्यर्थ है। आमतौर पर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि कैसा चल रहा है, हाँ सब भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, सब भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा किसे समझते हैं? धन को ही है ना, तो धन को ही भगवान की कृपा समझते हैं। तो हाँ, भगवान की कृपा के बिना सब व्यर्थ है, लेकिन भगवान की कृपा क्या? धन। लेकिन अभी हमने क्या समझा कि भगवान की कृपा वास्तव में धन नहीं है, है ना। भगवान की कृपा क्या है कि हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान के नामों का उच्चारण करें, है ना, भगवान की भक्ति में सेवा में लगे, भगवान के भक्तों का संग करें, यह वास्तव में भगवान की कृपा है। लेकिन व्यक्ति वास्तव में भगवान की कृपा तो मानता है कि भगवान की कृपा के बिना सब व्यर्थ है, लेकिन भगवान की कृपा क्या है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान की बहुत कृपा है ना, तो इसे हम भगवान की कृपा समझते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो उनको, जैसे मैंने बात की, क्योंकि उसकी भगवान के विषय में कोई श्रद्धा ज्यादा नहीं है, लेकिन धन के विषय में, धन के लिए जो है प्रति पूरी जो है आसक्ति है, श्रद्धा से बात शुरू होती है ना। धन में पूरी श्रद्धा है कि धन से ही सब कुछ संभव है। और फिर वो संघ किसका करता है? ऐसे ही साधुओं का संग करता है जिनके संग में धन जो है बढ़ सकता है। और उस प्रकार से उनके साथ कौन सी भजन क्रिया करूं जिससे वो धन बढ़े, ऐसी भजन क्रियाओं में व्यक्ति लगता है, है ना। और कैसे भजन क्रिया करूं, कैसे अच्छा धन बढ़े, और उसके बाद किस प्रकार से उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी अनर्थ आएंगे, उन अनर्थों से बचता हुआ आगे बढ़ूं, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसके अंदर, उसके धन के अंदर आसक्ति होती है, फिर पूरी निष्ठा कि धन से ही सब कुछ संभव है, है ना। देखो मैंने कितनी मेहनत से धन कमाया, इस धन से ही सब कुछ संभव है, पूरी निष्ठा। और उसके बाद कुछ कुछ व्यक्ति तो और आगे बढ़ जाते हैं ना, आसक्ति भाव और प्रेम के तक के जो है लक्षण प्रस्तुत करते हैं। तो लेकिन ये जो प्रेम है ये इस शरीर के, शरीर तक समाप्त हो जाएगा, उसके आगे ये प्रेम हमें आगे नहीं ले जा पाएगा। लेकिन जो वास्तविक श्रद्धा है और वास्तविक श्रद्धा से प्रेम तक का जो सफर है, ये किसके प्रति हमें होना चाहिए? भगवान के नाम के प्रति। तो उसमें हमें दृढ़ता आए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पिछले श्लोक में तो उसका लक्षण थे कि उसके दृढ़ व्रत जो भक्त है उसके क्या लक्षण है कि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है। लेकिन भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर भगवान ये वर्णन करते हैं कि जो दृढ़ व्रत है वो कौन हो सकता है। तो इसमें हमारा समय हो चुका है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी अपने अधिकतम लेक्चर्स के अंदर कोट करते हैं भगवद्गीता का, कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति दृढ़ व्रत हो सकता है। ये शाम तू अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कि वास्तव में कौन दृढ़वत हो सकता है? ये शाम तू अंत गतम पापम, जो वास्तव में पापों से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हो वही दृढ़वत हो सकता है। ये शाम तू अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम, और जिसके पुण्य कर्म जो है, जो आध्यात्मिक उसके पुण्य कर्म है वो विकसित हो चुके हों, और उसके बाद ऐसा ही व्यक्ति सभी द्वंद से मुक्त हो सकता है और वही दृढ़वत हो सकता है। लेकिन अब हमें समस्या आएगी, तो पापों से मुक्त कैसे हो? हम तो बहुत पाप करते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति सोचेगा हम तो सारे दिन पाप करते हैं, व्यापार में पाप करते हैं, घर में पाप करते हैं, हर समय समय पाप करते हैं, तो पापों से मुक्त होने का क्या तरीका है? ये भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जानते हैं कोई? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जो है हमें सभी पापों से मुक्त करते हैं, है ना। हम अपने प्रयासों से पापों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो इस हो सकता है संभव ना हो पाए कि हम पापों से मुक्त हो पाए, लेकिन हमें सभी पापों से मुक्त कौन कर सकता है? भगवान। लेकिन भगवान कब पापों से मुक्त करेंगे? जब हम उनकी शरण लेंगे। तो अगला क्वेश्चन नहीं आता कि हम भगवान की शरण फिर कैसे लें। तो इस कलयुग के अंदर भगवान की शरण लेने का क्या माध्यम है? तो चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि भगवान की शरण लेने का हर युग के अंदर अलग माध्यम है, लेकिन विशेष रूप से इस कलयुग के अंदर भगवान की शरण लेने का क्या माध्यम है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जो भगवान के नामों का उच्चारण है, सिर्फ भगवान के नाम ही जो है, भगवान के अपने नामों के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, उनकी शरण स्वीकार करके हम तुरंत भगवान की शरण स्वीकार कर सकते हैं। उन पर दृढ़तापूर्वक जो है भगवान के नामों का जप करके हम भगवान की शरण स्वीकार कर सकते हैं, और इस प्रकार हम पापों से मुक्त हो सकते हैं और अपनी भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी इतना सुनने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारी इतनी योग्यता नहीं है, है ना। तो इतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बड़ा अच्छा श्लोक आते हैं 10वें स्कंद के अंदर 14वें अध्याय में, जिसमें जो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं उसमें ब्रह्मा जी प्रे करते हैं कि जो भक्त है वो दृढ़ता से पीछे क्यों हट जाता है, वो अपने जो पापों का परिणाम है, कोई ना कोई कष्ट आते हैं जीवन में, उससे वो परेशान हो जाता है। तो उसके अंदर श्लोक आता है कि किस प्रकार से जो भक्त है अपने पापों को सहन करता हुआ भगवान की कृपा, हर चीज में भगवान की कृपा का अनुभव करता है कि भगवान की कृपा है ना। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने वात्मकृतं विपाकं हितवाक वपुभि विदधन नमस्ते जीवेत य मुक्ति पदे सदाय भाग। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कौन सा भक्त जो है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। तो उसमें बताया कि तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, जो भक्त है वो हर स्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है, वो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है लेकिन हर स्थिति को भी भगवान की कृपा ही मानता है। तो हर स्थिति को, चाहे वो अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति है, उसको भगवान की कृपा मानता है। और फिर क्या करता है, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, उसे भोगता है, है ना। किस प्रकार से भोगता है, एवात्मकृतम विपाकम, कि वो मेरे ही आत्म, आत्म मतलब स्वयं मैं, कृतम मैंने ही किया था, विपाकम बुरे कर्म, ये मेरे ही बुरे किए हुए कर्मों का फल है, वो इस प्रकार से उसे समझता है। और ऐसा समझते वो रोता नहीं है बैठ के, है ना, वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। हित वाक वपु भी विद्धन नमस्ते, हृदय से वाणी से और शरीर से वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो जो ऐसा भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तो उसमें आगे बताते हैं कि जीवेत या मुक्ति पदे सदाय भाग। जो इस प्रकार से जीता है, जो इस प्रकार से लगा रहता है अपना पूरा जीवन, तो ऐसा भक्त जो है वो मुक्ति का, जो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसमें अब लास्ट एग्जांपल लेके हम यहाँ पे इसको विराम देंगे कि एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु के ये जो आंदोलन है जिसमें भगवान नाम का शरण लेने के लिए हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के नामों के शरण ले सकते हैं, तो ये एक प्रकार से ये गोलोक एक्सप्रेस है, ये ट्रेन है जो गोलोक वृंदावन जा रही है ना। तो इसके अंदर हमें बस बैठ जाना है, हमारे अंदर कितनी भी अयोग्यताएं हो सकती हैं, हमें कितने भी कष्टों का, अपने पूर्व कष्टों का जो है उसको भोगना पड़ सकता है, कुछ भी कष्ट हो, कुछ भी समस्याएं हो, चाहे अच्छी स्थिति हो बुरी स्थिति हो, लेकिन अगर हम उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उस ट्रेन में बैठ जाता है, तो वो ट्रेन कहां जा रही है, गोलोक वृंदावन। तो क्या जो ट्रेन में बैठा है वो गोलोक वृंदावन पहुंच पाएगा, पहुंच पाएगा। चाहे वो फटे हाल है, बिल्कुल गरीब व्यक्ति है ना, उस कपड़े वपड़े फटे हुए हैं, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्या वो पहुंच पाएगा, पहुंच जाएगा। तो जो भक्त उदाहरण दे रहे थे उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अगर एक कुत्ता भी उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाए तो क्या वो कुत्ता पहुंच जाएगा, और वो कुत्ता उस ट्रेन के जाके वो उसके जो टॉयलेट है वहां टॉयलेट में बैठ जाए, उस टॉयलेट ट्रेन के टॉयलेट में बैठा है कुत्ता, और बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर भी नहीं निकल सकता, तो क्या वो पहुंच जाएगा, सडनली पहुंचेगा। जो बाकी लोग पहुंचे हैं और जो कुत्ता पहुंचा, कौन जल्दी पहुंचेगा, सब साथ में पहुंचेंगे, लेकिन बीच में कहीं ट्रेन रुकी, एक को जो बड़ा पढ़ा लिखा भक्त था उस ट्रेन के अंदर, है ना, और वो जो है उतर गया, देख रहा है कि ये कैसे है, कैसे पहुंचेगी, कहां का जाएगा, क्या क्या स्टॉपेज आएंगे बीच में, कैसे है, वो प्लेटफॉर्म पे उतर गया बाहर, और पीछे से ट्रेन सीटी बजाती हुई छुक 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 करके निकल गई, तो क्या वो पहुंच पाएगा, और वो जो कुत्ता ट्रेन के अंदर बैठा वो पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो जो भक्त बताए थे कि चाहे कुत्ते जैसी हालत भी क्यों ना हो, अगर हम भगवान के नामों की शरण को स्वीकार करेंगे और उस पर दृढ़तापूर्वक जो है उस पर लगे रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि निश्चित है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम भगवत धाम जाएंगे और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रह पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने एक्स्ट्रा समय लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद।